जय हो जय यशोदा नंदना जया ब्रज जन रंजना जय यशोदा नंदना जया ब्रज जन रंजना जया यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जया यमुना तीर बन चारी जया कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जया प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदिष डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यान श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंध अध्याय 7 अध्याय का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार और श्लोक संख्या 4। सबने निकाल लिया? मेरे पीछे बोलिए। अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यन् भगवान् स दत्तः यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगर्धि मापुरु भयेम यदुहै हयाद्या अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यन् भगवान् स दत्तः यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगर्धि मापुरु भयीं यदुहै हयाद्या
बोलिए प्रथम प्रिया बोलो बोलो
अत्रे पत्यम अभिकांक्षता आह तुष्टो
अत्रे पत्यम अभिकांक्षता आह तुष्टो
तत्तो मयाहमिति यत् भगवान् स दत्तः यत् पाद पंकज पराग पवित्र
देहा
योगर्धिमा पुरु भयीं यदुहै हयाद्या
पत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो
वैष्णो वैष्णो देवियां शब्दार्थ बोलिए अत्रे है अत्रे मुनि के अपत्यम संतान अभिकांक्षतः आकांक्षा करते हुए आह यह कहा तुष्टः प्रसन्न दत्तः दिया गया मया मेरे द्वारा अहम अपने आप को इति इस प्रकार यत क्योंकि भगवान श्री भगवान सह वे दत्तः दत्तात्रेय यत्पाद जिनके पांव पंकज कमल पराग धूलि पवित्र पवित्र देहा शरीर योग योग की रिद्धि ऐश्वर्य आपहु प्राप्त किया उभयी दोनों लोकों के लिए यदु यदुवंश के पिता है हय आद्या राजा है इत्यादि अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अत्रि महर्षि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु है इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। श्लोक आप लोग देख रहे हैं तो किस में पेपर में देख रहे हैं या बोर्ड में देख रहे हैं? दोनों में है श्लोक। किस में देखेंगे? पेपर में कागज में जिसमें सुविधा हो आप श्लोक देखिए। ठीक है, सबसे पहले तो समझिए श्लोक कौन कह रहे हैं, कौन बताएगा ये आज का श्लोक कौन कह रहे हैं, कौन बताएगा? मैत्री ऋषि तो अभी है ही नहीं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? नारद जी से बोल रहे हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि आपसे बढ़कर के तो हम किसी को जानते नहीं, आप ही हम सबके पिता हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, आपसे बढ़कर तो हम किसी को जानते नहीं, आप भी किसी का ध्यान कर रहे हैं, क्या आपसे भी बढ़कर कोई है? है ना? तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए ये प्रश्न कर इस प्रश्न से, है ना? जो घमंडी व्यक्ति होता है वो कहेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा प्रश्न करने की कि मुझसे बढ़कर कोई है, है ना? जो घमंडी व्यक्ति होता है वो नहीं चाहता अपने से बढ़कर के किसी को बताना, लेकिन ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए हैं जब नारद जी ने पूछा कि लगता है कि आपसे बढ़कर के भी कोई है क्योंकि आप किसी का ध्यान कर रहे हैं, तो कौन है आपसे बढ़कर के? तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत संतुष्ट हुए हैं और बहुत धन्यवाद दिया है क्योंकि ब्रह्मा जी के अंदर ये इच्छा है बताने की। तो भगवान का अब जो है महात्म बतला रहे हैं, तो भगवान के गुणगान में उनके अवतारों का जो है वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो आज के श्लोक में ब्रह्मा जी ने एक नए अवतार का वर्णन किया है, है ना? अब क्या है अवतार सुनिए, श्लोक देखिए शब्द क्या है। अत्रेहे, अत्रेहे सबसे पहला शब्द क्या है? अत्रेहे यानी अत्रि मुनि के द्वारा, है ना? अपत्यम, अपत्यम का मतलब संतान, अभिकांक्षतः, अभिकांक्षतः यानी इच्छा करने पर, अत्रि के द्वारा संतान की इच्छा होने पर, अत्रि मुनि को संतान की इच्छा हुई, पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई, है ना? तो आहे, आहे का मतलब है जिन्होंने कहा, जिन्होंने वचन दिया, मतलब अत्रि मुनि ने तपस्या की भगवान को प्रसन्न करने के लिए और फिर उन्होंने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि आप हमारे पुत्र बनिए। तो आ है, आ है माने बोले, कौन बोले? भगवान बोले। किससे बोले? अत्रि मुनि से बोले, तुष्टो, तुष्ट होकर के बोले, तुष्ट होकर के बोले भगवान, तुष्ट होकर के बोले है? क्या बोले? दत्तो मया अहम इति, इति माने इस प्रकार, दत्तो मया अहम, दत्तो माने दिया गया, माया माने मेरे द्वारा, अहम माने मैं, क्या मतलब, मैं ही, मेरे द्वारा मैं ही दिया गया, किसको, हाँ आपको, अत्रि मुनि से कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को आपको दे दिया, मतलब पुत्र, मैं आपका पुत्र बन गया, तो मैंने अपने आप को आपको दे दिया, कि मतलब मुझे पुत्र बनाने की इच्छा है तो बना लो पुत्र, भगवान कहते हैं दत्तो मया अहम इति यद भगवान, तो यद भगवान मतलब चूंकि ऐसे भगवान, भगवान से दत्ता, इसलिए भगवान क्या कहलाए, दत्त, दत्त का मतलब दिया गया, आप समझ रहे, दत्त का मतलब क्या होता है, दिया गया है ना, दिया दत्ता, जैसे मान लो किसी का नाम है कृष्ण दत्त, इसका मतलब कृष्ण के द्वारा दिया गया, ठीक है ना, और इनका नाम क्या है, दत्त अत्रेय, अत्रेय का मतलब अत्रि के लिए, दत्त माने दिए गए, दत्तात्रेय का मतलब क्या है, अत्रि के लिए जो दिए गए, किसके द्वारा दिए गए, उन्हीं के द्वारा, स्वयं के द्वारा दिए गए, स्वयं ने जो है अपने आप को दे दिया अत्रि के लिए पुत्र के रूप में, है ना, कितना इसमें आश्चर्य है, कितना आश्चर्य है, भगवान का कैसा गुण है, देखो भगवान किसी के पुत्र बने, जबकि असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी अभी जो है किसी के पुत्र बनते हैं, कैसे गुण है, अचिंत्य गुण, सोच सकते कोई है, आप किसी बड़े आदमी को कहें कि भाई हमारे पुत्र बन जाओ, वो कहेगी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे तुम ऐसा कहते हो कि मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊं, असंख्य ब्रह्मांडों के जो सृष्टिकर्ता है ना, तो वे जो है पुत्र बन जाते हैं, और जब पुत्र बन जाते हैं तो पूरी तरह से अधीन हो जाते हैं, जैसे पुत्र होता है ना अपने अधीन होता है कि नहीं, पुत्र कैसा होता है, बेटा खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाता है, बेटा बैठ जाओ तो बैठ जाता है, पूरा अधीन, भगवान जो है ऐसे अधीन हो जाते हैं भक्त के, भक्ति में जो है इतना गुण है कि भगवान इतने अधीन हो जाते हैं, तो क्या है, दत्तो मया अहम इति यद भगवान सदत्ता, यद माने चूंकि भगवान सदत्ता, इसलिए भगवान क्या कहलाए इस अवतार में, क्या कहलाए इस अवतार में, दत्त, दत्तात्रेय, अत्त दत्त अत्रेय, इसलिए मिला करके संधि हो गई, दत्तात्रेय, दत्त अत्रेय, है ना, फिर यत पाद पंकज, यत माने जिनके पाद पंकज, जिनके चरण कमल, पराग, जिनके चरण कमल की धूली, कमल की जो धूली होती है उसको बोलते हैं पराग, कमल में जो धूली होती है ना पाउडर है, वो क्या होता है, पराग होता है, बहुत सुगंधित होता है, बहुत पवित्र होता है, सुगंधित होता है, तो जिनके चरण कमल की धूली से पवित्र देहा, पवित्र देह वाले हुए है? देहा ये बहुवचन में है, तो कई लोग जो है जिनके चरण कमल की धूली से पवित्र हुए इस अवतार में, किस अवतार में, दत्तात्रेय के अवतार में, उनके चरण कमल की धूल से कई लोग पवित्र हुए, योगर्धिम, योग रिद्धिम आपो, योग की सिद्धियां प्राप्त की, उरुभयीम, उरुभयीम का मतलब है दोनों प्रकार की, दोनों प्रकार की मतलब भौतिक और आध्यात्मिक, भौतिक सिद्धियां और आध्यात्मिक सिद्धि, आध्यात्मिक सिद्धि क्या होती है, भगवान के धाम में जाना, भगवान के धाम में जाना, भगवान को जान लेना, आध्यात्मिक सिद्धि, और भौतिक सिद्धि आठ प्रकार की, अणिमा, महिमा, गरिमा, ये सब भौतिक सिद्धियां हैं, तो दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की, उरुभयीम यदु है आद्या, आद्या का मतलब आदि, और यदु और है दो नाम बताए, एक तो यदु का, महाराज यदु का नाम बताया, और दूसरा है एक राजा हुए हैं जो सहस्त्रबाहु अर्जुन कहलाए, तो इन्होंने अब हम सुन रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की भगवान तथा जीवात्माओं के मध्य पांच प्रकार से सनातन आध्यात्मिक संबंध स्थापित होते हैं। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, पांच प्रकार से सनातन आध्यात्मिक संबंध स्थापित होते हैं। सनातन है जीव का भगवान के साथ में पांच प्रकार से आध्यात्मिक संबंध है जो सनातन है। सनातन मतलब हमेशा के लिए, मतलब प्रत्येक जीव चाहे मैं हूँ चाहे आप हो कोई भी हो, तो पांच प्रकार के संबंधों में से कोई एक संबंध हमारा भगवान के साथ है, आपका सबका, पांच प्रकार के संबंधों कोई भी एक संबंध जिसे हम जानते नहीं है और जिसको जगाना ही सबसे बड़ी सिद्धि है, योग सिद्धि, आध्यात्मिक योग सिद्धि क्या है वो संबंध जगाना। पांच प्रकार के संबंध कौन कौन से हैं, पहला संबंध क्या है, इसमें लिखा है तात्पर्य से तुम्हें पढ़ रहा हूं। सबसे पहला है शांत है, शांत का मतलब शांत संबंध। शांत संबंध का मतलब क्या है, भगवान पिता हैं हमारे, भगवान हमारे पालक हैं, भगवान हमारे रक्षक हैं और हम उनके पुत्र हैं, हम उनके अधीन हैं, हम उनके शरण में हैं, हमारी नाम के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। तो ये शांत संबंध, शांत संबंध है ना, तो व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाता है भगवान के चरणों की शरण लेकर के, है ना। तो शांत रस में जो है संबंध होता है, तो कई भक्तों का शांत रस में संबंध है, जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, प्रहलाद जी हैं, ये सब शांत रसमय संबंध इनका है भगवान के साथ में, है ना। तो भगवान की शरण लेकर के जब कोई व्यक्ति कष्टों से मुक्त हो जाए है और उसमें वो अपने को सुरक्षित समझता है तो वो शांत रस कहलाता है। तो पहला ये है, ये भी सनातन संबंध है हमेशा हमेशा के लिए। तो कुछ भक्त लोग जो है भगवान के धाम में भी रहते हैं और शांत रस में उनका संबंध रहता है भगवान के साथ, और भगवान की लीलाएं सुनते हैं और आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, विस्मित होते हैं, हर्षित होते हैं, शांत रस में संबंध है ना। दूसरा संबंध दास, दास रस में संबंध है कुछ जीवों का। दास रस में संबंध क्या मतलब, सेवा, सेवा करना है। शांत रस में सेवा होती है, सेवा की भावना तो प्रत्येक रस में है, सेवा की भावना प्रत्येक रस में है, लेकिन दास रस में ज्यादा सक्रिय सेवा की भावना होती है, तो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये चिंता, ये चिंता, वो जो है दास रस में सेवा। दास रस के उदाहरण जैसे कौन है, है? हनुमान जी, हनुमान जी वीरासन में बैठते हैं हमेशा, क्यों, जैसे आदेश मिले तुरंत उठ खड़े हो जाएं। जैसे आप बैठे हैं अभी तो इसमें जल्दी नहीं उठ पाएंगे, है ना, लेकिन वो इस आसन में नहीं बैठे हैं हनुमान जी, वीरासन में बैठे हैं। वीरासन में जैसे आदेश मिले तुरंत खड़ा हो जाए और दौड़ने लगे, क्योंकि वो सेवक हैं और सेवा आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मुझे कब आदेश मिले और मैं तुरंत आदेश का पालन करूं, वीरासन में बैठे हैं। तो ये दास भाव, तो इस प्रकार के दास भाव में बहुत संबंध है। हनुमान जी के अलावा और भी हैं, जैसे ब्रज के सेवक हैं, रक्तक पत्रक चित्रक, ये कृष्ण की जो है सेवा में लगे हैं। किसी का काम है वह कपड़े धोना, किसी का काम है सफाई करना, बर्तन साफ करना, और किसी का काम है भोजन तैयार करना, और दासियां भी हैं बहुत सी कृष्ण के घर में, है ना। तो गोबर थापती हैं, गोबर इकट्ठा करती हैं, कंडे बनाती हैं, कई काम हैं। तो गोलोक धाम में ऐसे दास दासी हैं बहुत से और कई प्रकार की सेवा में लगे हैं। तो दास रस में संबंध है कुछ जीवों का, और सनातन है ये, सनातन समझ रहे, सनातन संबंध है। फिर तीसरा संबंध क्या है, सख्य भाव में, सख्य भाव में संबंध है। सख्य भाव में संबंध मतलब क्या, नहीं नहीं अर्थ क्या हुआ, बराबर मित्र, मित्रता का भाव, मित्रता का भाव, बराबर का भाव, जैसे अर्जुन है मित्रता का भाव रहता है, बराबर सख्य संबंध है ना। तो ऐसे भी बहुत से जीव हैं भगवान के धाम में, कृष्ण के गोप सखा, कृष्ण के साथ गौ में चराने जाते हैं, कृष्ण के साथ कभी कुश्ती लड़ते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कृष्ण के कंधे में चढ़ जाते हैं, ये सब जो है सख्य भाव में संबंधित है। फिर चौथा वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव में क्या मतलब है, मतलब क्या है, मतलब वात्सल्य भाव का मतलब क्या है, माता पिता की तरह, हाँ वात्सल्य भाव है ना। तो कृष्ण के लिए उनको चिंता होती है कि कृष्ण को खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है, नहलाना है, इस तरह की जो है माता पिता हैं। और माता पिता के समान तो बहुत हैं, माता पिता तो एक ही हैं यशोदा और नंद, लेकिन यशोदा माता की तरह बहुत सी स्त्रियां हैं जो धाये कहलाती हैं, उनका भी भाव कृष्ण के प्रति पुत्र का है, वात्सल्य भाव में है, तो वो माता की तरह हैं। पिता तो एक ही हैं नंद महाराज, कृष्ण के पिता की तरह बहुत से हैं, है? पिता की तरह बहुत से हैं गोप जो कि वृद्ध गोप कहलाते हैं, वो कृष्ण के प्रति उनका पुत्र भाव रहता है, है? तो इस तरह से वात्सल्य भाव। और फिर चौथा पांचवा माधुर्य भाव, माधुर्य भाव का मतलब प्रेमी है ना। अब वो पति हो या पर पति हो, अपने पति हो तो कृष्ण अपने पति भी हैं, तो कौन कुछ भक्तों का जो है कृष्ण के विवाहिता पत्नियां हैं, कुछ स्त्रियां कृष्ण की विवाहिता पत्नियां हैं, तो वो भी माधुर्य भाव है। और कुछ कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं, है ना। चार भाव, जार भाव, जार भाव सबसे श्रेष्ठ, जार भाव सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि जार भाव में क्या होता है कि उनकी कृष्ण के मिलने से जो है जो उत्कंठा होती है, चिंता होती है, वो बहुत तीव्र होती है, है? क्योंकि समाज की दृष्टि में ये निंदा की बात है, कृष्ण से नहीं मिल सकती हैं और कृष्ण बड़ी प्रतिबंध है, तो उसमें जो कृष्ण का जो चिंतन होता है वो बहुत तीव्र होता है, तो वो जार भाव जो है विशेष है ना। इसको और भी शब्द है ना, कुछ और शब्द है इसका, क्या बोलते हैं, स्वकीया परकीया भाव, परकीया भाव, स्वकीया भाव, माधुर्य में दो प्रकार के भाव, स्वकीया भाव और परकीया भाव। स्वकीया भाव अब भगवान कृष्ण की अपनी पत्नियां हैं, तो स्वकीया भाव में जो है कृष्ण का इतना चिंतन नहीं होता, क्योंकि घर के और भी काम हैं और बच्चे हैं, इनको संभालना, तो कृष्ण के प्रति उतना जो है एकाग्रता नहीं होती है स्वकीया भाव में, समझ रहे हैं। परकीया भाव में बहुत एकाग्रता रहती है, क्योंकि घर के काम काज करते हैं लेकिन दिमाग कृष्ण में लगा रहता है कि कैसे कृष्ण से मिले, है ना। तो ये भौतिक संसार में परकीया भाव बहुत निंदनीय है, किसी स्त्री का जो है अपने विवाहित पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष में अगर मन लग जाए तो ये निंदा की बात है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में यही सबसे अधिक प्रशंसा की बात है, सबसे अधिक प्रसन्न है। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणुम अभीक्षण सहा या साम हरि कथोद्गीतम पुनाति भवन त्रयम। तो नंद ब्रज की स्त्रियां, इनका भाव परकिया, परकिया भाव है। नंदे नंद, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम, तो ब्रज की स्त्रियों के, नंद के ब्रज की स्त्रियों के पादरेणुम चरणों की धूल को मैं वंदना करता हूँ और बार बार वंदना करता हूँ। या साम हरि कथोद्गीतम, जिनके द्वारा हरि कथा का जो उद्गान हुआ है वो पुनाति भवनत्रयम पूरे तीनों लोगों को पवित्र करता है। तो ये जो है माधुर्य, इस प्रकार के पांच भाव हैं। आगे है तो हाँ, तो आगे प्रभुपाल लिखते हैं, अत्रि मुनि भगवान से वात्सल्य भाव से जुड़े थे, अत्रि मुनि है ना, अत्रि मुनि भगवान से वात्सल्य भाव से जुड़े थे, अतः वे अपनी भक्ति की पूर्णता के फल स्वरूप भगवान को पुत्र रूप में चाह रहे थे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके पुत्र रूप में स्वयं जन्म लिया। भगवान तथा शुद्ध भक्त के बीच इस प्रकार के पुत्रत्व यानी वात्सल्य भाव के संबंध के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, अनेक उदाहरण है। चूंकि भगवान असीम है अतः उनके पिता भक्तों की संख्या अनंत है, पिता भक्तों की संख्या अनंत है, कोई संख्या नहीं है, है ना। भगवान के पिता भक्तों की संख्या अनंत है। मैंने बताया ना कि कैसे पिता भक्तों की संख्या अनंत है, कि किसी बच्चे के एक से ज्यादा पिता थोड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर यहां कैसे बताएगा पिता भक्तों की संख्या अनंत है, इसका क्या अर्थ है? नहीं नहीं हाँ, पिता के समान है, पिता के समान, हाँ नहीं वो तो है ही है, मतलब वो तो एक अवतार में तो एक ही पिता हुए ना, लेकिन एक अवतार में कई पिता भी हो सकते हैं। कैसे? एक एक तो पिता हैं जो जनक पिता हैं, जन्म देने वाले, और दूसरे पिता जो है जो पिता के समान होते हैं, पिता के समान, पिता के बहुत से मित्र हैं, पिता के बहुत से बंधु बांधव हैं, संबंधी हैं, तो वो सब पिता के समान हो गए ना, तो ऐसे तो बहुत हो सकते हैं ना पिता के समान है। उपनंद है ना, नंद के कितने भाई हैं, कितने मित्र हैं, तो पिता के जितने भी मित्र हैं वो भी तो पिता के समान हो गए भगवान के। तो इस प्रकार से भगवान के जो है मतलब बहुत से पितृतुल्य हैं, भक्त हैं, पिता पिता भक्तों की संख्या अनंत है, अनंत है, पिता भक्तों की संख्या अनंत है। और भगवान क्या करते हैं, सबके घरों में जाते हैं और उनके घर में भोजन करते हैं, सोते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं। भगवान जो है सबके घरों में जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है मतलब अपने को अनेक रूपों में विस्तार कर लेते हैं। तो कितने कितने पिता भगवान के पिता के समान हैं, काका चाचा, पिता के मित्र हैं वो भी, उनको क्या बोलते हैं पिता के मित्रों को क्या बोलते हैं, चाचा, चाचा ही तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे, है ना, चाचा काका जो भी हो, तो ऐसे बहुत से भगवान के। तो भगवान उन सबके घरों में खाते हैं, सोते हैं, खेल खेलते हैं, अब उनको गोद में बिठाते हैं, लाल लड़ाते हैं, जैसे बहुत से अनंत हैं पिता भक्तों की संख्या अनंत है। वास्तव में भगवान समस्त जीवात्माओं के पिता हैं। ऐसे कई भक्त हैं मेरे संपर्क में भी हैं, ऐसे भक्त जो अर्चा विग्रह के रूप में जो है ना वो भगवान को जो है अपना पुत्र मानते हैं, और वो भगवान जो है ऐसी लीलाएं करते हैं, तो पिता की तरह जो है लीलाएं भगवान पिता है बड़ी जल्दी है बना लेते हैं किसी को। भगवान को अगर आप पिता बनाते हैं तो वो शांत रस है, लेकिन भगवान के आप पिता बनते हैं तो वात्सल्य रस है, तो इसमें भगवान को ज्यादा आनंद आता है। किसमें ज्यादा आनंद आता है भगवान को, पिता बनने में या पुत्र बनने में? पुत्र बनने में ज्यादा आनंद आता है। तो भगवान को आप पिता बनाते हैं तो भगवान स्वीकार कर लेंगे पिता बनना, लेकिन अगर भगवान के आप पिता बनते हैं तो भगवान ज्यादा तैयार होते हैं इस काम के लिए। क्यों? करो मेरी सेवा, भगवान कहते हैं हाँ अब मेरी सेवा करो। तो ज्यादा इसमें भगवान को सुख मिलता है और भक्तों को भी सुख मिलता है, ज्यादा रस है, शांत रस से ज्यादा रस वात्सल्य भाव में, है ना। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि उनके पिता भक्तों की संख्या अनंत है। वास्तव में भगवान समस्त जीवात्माओं के पिता हैं, किंतु भक्तों के आध्यात्मिक प्रेम में से पिता बनने की अपेक्षा किसी भक्त का पुत्र बनना अधिक पसंद करते हैं। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता रहता है। क्या समझे? फूफा क्या लिखते हैं? वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, पिता पुत्र की सेवा करता है। हाँ आगे चल करके तो इस भौतिक संसार में ऐसा होता है कि पिता बूढ़ा होता है और पुत्र पिता की सेवा करता है, लेकिन भगवान के साथ तो ऐसा नहीं होता ना कभी, भगवान तो कभी बूढ़े होंगे नहीं, आप समझ रहे ना। तो जीव का जो है पिता पुत्र का जब संबंध बनता है तो भगवान हम पिता हैं तो हमेशा वे जो है जवान है और पुत्र जो है हमेशा बालक है, तो हमेशा संबंध यही रहेगा, है ना। जब आप भगवान के पिता बन जाते हैं और भगवान पुत्र बन जाते हैं तो भगवान भी बड़े नहीं होंगे, भगवान हमेशा छोटे बालक रहेंगे और आप हमेशा उनके पिता रहेंगे तो हमेशा उनकी सेवा करते रहेंगे। भौतिक संसार में ऐसा नहीं होता है। भौतिक संसार में क्या होता है, पहले पिता पुत्र की सेवा करता है और बाद में पुत्र पिता की सेवा करता है या ना करे सेवा अलग बात है, छोड़ देते हैं। लेकिन आगे चल करके तो फिर पिता की मृत्यु होती है, पुत्र बड़ा होता है, पिता बूढ़ा होता है, फिर पिता मर जाता है, फिर पुत्र पिता बन जाता है, तो यहां ऐसा तो है ही नहीं। मगर आप भगवान के पिता बनते हैं तो हमेशा आप पिता रहेंगे और भगवान आपके पुत्र रहेंगे और वो छोटे से पुत्र रहेंगे, भगवान बड़े नहीं होंगे ना आप बूढ़े होंगे ना आप मरेंगे। और भगवान अगर आपके पुत्र बन गए, नहीं मैंने क्या कहा दोबारा वही दोहरा रहा हूं क्या, अगर दूसरी तरह से हुआ, क्या दूसरी तरह से क्या हुआ, भगवान पिता बन गए, अगर भगवान पिता बन गए आप पुत्र बन गए तो आप भी छोटे रहेंगे भगवान पिता रहेंगे, ना भगवान कभी बूढ़े होंगे ना आप कभी बड़े होंगे। तो यह शरीर का परिवर्तन तो होता नहीं, आध्यात्मिक जीवन में शरीर का परिवर्तन तो होता नहीं, सनातन है हमेशा के लिए, है ना। यहाँ प्रभुपाल लिखते हैं आगे, अतः जब जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, फिर से वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता रहता है, अतः जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है उन्हें पुत्र रूप में चाहता है, पिता रूप में नहीं। क्या शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है उन्हें पुत्र रूप में चाहता है, पिता रूप में नहीं। ठीक है, समझ गए, है ना, पुत्र रूप भगवान पुत्र रूप में, है ना। तो भगवान आदेश देते हैं, है बेटा आज क्या खाओगे, तो भगवान बोलते हैं आज समोसा खाना है मुझे, और कहते हैं आज जो है मुझको लड्डू लेना है, मुझे पकौड़ा खाना है, मुझे ये सब्जी खाना है, मेरी बनाओ ये बनाओ वो बनाओ, होता है ऐसा। अर्षा विग्रह के रूप में भगवान जो है ऐसी ऐसी मतलब मांगे करते हैं, है? आनंद बढ़ता है, है? तो इस तरह से होता है। और आगे प्रभुपाल लिखते हैं, भगवान भी भक्ति की ऐसी सेवा को स्वीकार करते हैं, का लिखा है को होना चाहिए, भगवान भी भक्ति की ऐसी सेवा को स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता है, भगवान से बढ़कर हो जाता है। इसमें भगवान को आनंद है, भगवान से बढ़कर कौन हो सकता है, भगवान के समान कौन हो सकता है, लेकिन भक्त भगवान से बढ़कर के हो जाता है, इसमें कितना आनंद है। आगे, निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होना चाहता है किंतु भक्त तो भगवान से बढ़कर होता है। वो सोचते हैं कि हम भगवान की सेवा क्यों करें, हम तो भगवान से एक होना चाहते हैं, लेकिन ये मूर्खता है, भक्त तो भगवान से बढ़कर क्यों होता है ना। आगे, और बड़े से बड़े एकेश्वरवादी से आगे होता है, एकेश्वरवादी से आगे होता है। इस निकट संबंध के कारण भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योगी की सभी सिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं, स्वतः प्राप्त कर योग की सब सिद्धियों को स्वतः। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं कि आपको योग सिद्धियों को पाने की कोई चिंता नहीं करना चाहिए, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप पिता बन गए, भगवान आपके पुत्र बन गए, है ना, तो फिर क्या कमी है, फिर क्या कमी है, है ना, फिर तो सब प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी, अपने आप होती रहेंगी, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी, है ना, और सुरक्षा भी होती रहेगी, है ना। भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योग की सभी सिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी सिद्धियों में सभी प्रकार का भौतिक सुख मुक्ति तथा योग सिद्धियां सम्मिलित रहती हैं, सब कुछ मिलता है, भगवान सब कुछ देते हैं, है ना, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, मतलब कोशिश नहीं करते जो भक्त हैं, कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करते। क्या पाना चाहते हैं, केवल सेवा, केवल सेवा। अगर आप जो है मतलब ले लें भगवान से तो बाकी सब कुछ अपने आप मिलेगा, है ना। तो सेवा के अलावा कुछ नहीं मांगना चाहिए, अगर भगवान से कुछ मांगना है तो सबसे बड़ी चीज मांगना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज क्या है, भगवान की सेवा, है ना। अगर आपने योग सिद्धियां प्राप्त मतलब मांग ली भगवान से तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आपने कहा कि भगवान मुझको जो है ऐसी सिद्धि दीजिए, प्राप्ति, कि मैं जो चाहूँ वो प्राप्त कर लूँ, तो 10 किलोमीटर दूर जो है किसी ने बनाया है, कुछ भोजन बनाया है, आप ऐसे हाथ बढ़ाएंगे आपके हाथ में आ जाएगा वो प्राप्ति, तो बड़ी अच्छी सिद्धि है। लेकिन बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़े घाटे में रहेंगे आप। अणिमा सिद्धि है, आप कहें भगवान मुझे अणिमा सिद्धि दे दीजिए, अणिमा सिद्धि के द्वारा आप इतने छोटे से कण बन सकते हैं कि ताले के अंदर, ताला जो है बंद है, उस संदूक के अंदर आप घुस जाएंगे, एयर टाइट संदूक के अंदर भी आप घुस सकते हैं इतने छोटे बन करके, है ना। तो ऐसी योग सिद्धियां होती हैं, अणिमा लघिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम में ईशित्व वशिता, ये सब सिद्धियां होती हैं। लेकिन बहुत घाटा है, बहुत बड़ा घाटा है इससे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः भगवत अर्थ से इनकी खोज करने में वृथा अपना समय नहीं गंवाता। किनकी खोज करने में? सिद्धियों की खोज करने में वृथा समय नहीं, व्यर्थ का समय। लगता है बड़ा आश्चर्य, अरे क्या आश्चर्य है, है? हमें मतलब जैसे बैठा हूँ और वो घड़ी जो है दीवार में टंगी है और मैं ऐसे करूँगा और घड़ी जो है मेरे हाथ में आ जाएगी, बड़ी अच्छी सिद्धि है। तो है ना, बैठे बैठे मैं जो है कोई कुर्सी ऐसे करता हूँ तो कुर्सी मेरे पास आ जाती है, मुझे उठना नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये बड़ी अच्छी सिद्धि है, प्राप्ति सिद्धि है, है ना। 10 किलोमीटर दूर की भी चीज़ मैं जो है ऐसे करूँगा मेरे हाथ में आ जाएगी। किसने चपाती बनाई गरम गरम, मैं हाथ से ऐसे करूँगा गरम चपाती मेरे हाथ आ जाएगी, है? तो बड़ी अच्छी सिद्धियाँ हैं। तो लेकिन बहुत घाटा है अगर भगवान की सेवा ना मांग करके आपने, अगर इन सिद्धियों में अगर आपने अपनी शक्ति लगाई, समय बर्बाद किया, बहुत बड़ा घाटा है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मतलब प्रभुपाद ने क्या लिखा, अतः भगवत भक्त अलग से इनकी खोज करने में वृथा अपना समय नहीं गंवाता, अलग से नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये सब सिद्धियां अपने आप हैं, इसमें भगवान की सेवा में अपने आप हैं। आगे मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा में पूरी तरह लगाए। ऐसा संदेश कौन दे सकता है प्रभुपाद के अलावा, सोचिए, ऐसा संदेश प्रभुपाद के अलावा और कौन दे सकता है? क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा में पूरी तरह लगाए, पूरा पूरी तरह लगाए, है ना। तब अन्य वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाएंगी, किंतु इन सब उपलब्धियों के प्राप्त होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने रूपी गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करे। हाँ देखो कितनी मतलब बड़ी बात है, प्रभुपाद कह रहे हैं फिर भी भक्तों के अपराध से डरना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए लेकिन फिर भी डरना, किस राह से डरना है? ये डर होना चाहिए भक्ति में जो है, अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपके अंदर एक डर हमेशा होना चाहिए। कौन सा डर? वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा, ये डर होना चाहिए। हाँ, और ये डर नहीं होता है तो बस गए, दुर्गति ही दुर्गति है। हाँ? तो यहां पर क्या लिखा है, प्रभुपाद कहते हैं कि इतना होने पर भी, इन सब उपद्रवों के होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने रूपी गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, हाय है, क्योंकि इसमें दो उदाहरण दिए ना, दत्तात्रेय भगवान से दो लोगों ने, मतलब दो लोग आदि करके तो बहुत लोगों ने कृपा प्राप्त की, यदु और है हाय। तो यदु तो फिर भगवान के पिता, मतलब भगवान उनके वंश में, यदु के वंश में भगवान ने जन्म लिया, है ना। तो यदु ने तो पूरा लाभ उठाया दत्तात्रेय भगवान की कृपा का, लेकिन है राजा ने लाभ उठाया लेकिन फिर बहुत नुकसान भी उठाया। क्यों नुकसान उठाया? है ने जिसने भक्ति के द्वारा ऐसी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, किंतु भक्त के चरणों पर अपराध करने के कारण परशुराम ने उसका वध कर दिया। क्या अपराध किया था है ने? जमदग्नि मुनि के आश्रम में आए सहस्त्रबाहु अर्जुन जो है राजा थे, और अपनी पूरी सेना लेकर के जंगल में आए, जंगल में जो है जमदग्नि मुनि का आश्रम था, तो उनकी पत्नी जो रेणुका थी, तो वो उनकी बहन थी, उनकी पत्नी की बहन थी, राजा की पत्नी की बहन थी। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि हमारे जो है जो भी कहें क्या कहें, देवर कहें क्या कहेंगे, बहन के पति जीजा आए हैं तो स्वागत करो। तो जमदग्नि मुनि के आश्रम में जो है गाय थी, कामधेनु गाय थी, है ना, तो उससे जो है सब कामनाएं पूरी हो जाती। तो गाय के द्वारा उन्होंने जो है मतलब कई महल बना दिए, सब सैनिकों को ठहरा दिया, महलों में ठहरा दिया, जंगल में ही महल बना दिए, हैं सैया बना दिए, सेवक और दासियां बहुत पैदा कर दी, और कई कई प्रकार के व्यंजन पैदा कर दिए, खिला खाना पीना सब कुछ, इतना सेना का जो है सत्कार किया। और राजा है जो थे वो सोचते हैं कि अरे जंगल में ये ऋषि तपस्या में लगे हैं, ये तो इनके पास कुछ भोग है ही नहीं, सब विरक्त, पूरी तरह से विरक्त, कुछ नहीं मतलब खाना पीना इनका तो सब बिल्कुल बिल्कुल वो है, जंगल के पत्ते खाएंगे या कुछ क्या खाएंगे, ऐसे ही इनकी कुटिया भी ऐसे ही कुटिया है, और हमारे लिए इतने महल बना दिए, इतने सेवक दासियां ये और व्यंजन, इतने व्यंजन है ना, कहाँ से ये क्या रहस्य है। तो पता चला कि इनके पास गाय है, तो उन्होंने क्या सोचा कि गाय तो राजाओं के पास होना चाहिए, ऐसी गाय सब प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं तो राजाओं के पास होना चाहिए, इनके पास क्यों है। तो उसने जमदग्नि मुनि से ना तो मतलब धन्यवाद कहा, ना उनसे प्रार्थना की कि मैं आपसे गाय लेना चाहता हूँ, आप मुझे गाय दे सकते हैं। राजा मेरा पूरा अधिकार है, गाय ली और चल पड़े अपना अधिकार। ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, वैष्णव अपराध, अपना अपराध, अपना अधिकार मान लिया और कोई धन्यवाद नहीं। उन्होंने तो जो है सत्कार किया तो धन्यवाद देना चाहिए, तो धन्यवाद देने के बाद अलग है, बिना कुछ कहे बिना धन्यवाद दिए और अपना गाय लेकर के चल पड़े। और जमदग्नि मुनि ब्राह्मण है भाई, सहन करना चाहिए, कोई अत्याचार करे तो सहन करे, ब्राह्मण ब्राह्मण विरोध नहीं करना चाहिए, तो वो सहन किया। और जब जो है उनके पुत्र कौन थे, परशुराम जी आए आश्रम में, आश्रम सोना है, गाय कहाँ गई, पता चला कि उसने ऐसा किया, तो उनको बहुत गुस्सा आया, तो वो फरसा लेकर के आए और उसकी पूरी सेना का जो है वध कर दिया, और सहस्त्रबाहु अर्जुन की सब भुजाएं काट करके उसका सिर भी काट दिया और गाय लेके आए। तो इसका मतलब क्या है कि आप भक्ति में जो है कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपको एक डर हमेशा होना चाहिए, हमेशा डर होना चाहिए, किस बात का डर होना चाहिए, और विशेष रूप से किसी ने आपको कुछ सिखाया उसी के ही उल्टा बोलने लगे, उसी की निंदा करना शुरू कर दिया, जिसे आपने सीखा उसी की निंदा करना शुरू कर दिया, महा वैष्णव अपराध, घोर अपराध है, करने लगते हैं ना, करते हैं ऐसा, होता है ऐसा, जिंदगी भर झुको उसके सामने है ना, लेकिन नहीं फिर तो ऐसे फिर ऐसे है ना, ये जो है अपनी दुर्गति का कारण है। प्रभुपाद क्या कहते हैं, गड्ढे में गिरना है, गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अच्छा हाँ, ये तो मैंने पढ़ दिया, जिसने भक्ति के द्वारा ऐसी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, किंतु भक्त के चरणों पर अपराध करने के कारण परशुराम ने उसका वध कर दिया, भगवान अत्रि मुनि के पुत्र बने और दत्तात्रेय कहलाए। तो यहां प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। ठीक है, अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा। अच्छा पिछली बार, हाँ बोलिए, भगवान स्वयं जो है जब ऐसी स्थितियां बनाते हैं तब संबंध बनता है, जैसे अत्रि मुनि, अत्रि मुनि की तो हिम्मत नहीं थी कि भगवान से कहें कि आप हमारे पुत्र बनिए, लेकिन भगवान ने जब उनकी इच्छा देखी तो भगवान ने कहा कि मैंने अपने आप को दे दिया, तो भगवान स्वयं बन गए पुत्र। जब पुत्र बन गए तो फिर वो भगवान ज्ञान भी ढक देते हैं कि ये भगवान है, आप समझे ना, तो भगवान फिर ऐसा ज्ञान जो है फिर बना देते हैं कि ऐसी स्थिति बना देते हैं कि आप सोचेंगे कि ये मेरा पुत्र ही है, जैसे माता यशोदा है ना, तो भाव जो पुत्र का भाव है वो भगवान देते हैं, भगवान ऐसा बनाते हैं। तो ये जो स्थिति है ये भगवान जब बनाएंगे है ना, तभी जो है मतलब आप वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अभी तो हम शांत भाव में ही नहीं है, शांत भाव में ही नहीं है, अभी तो हमें यही कोशिश करना चाहिए अनर्थों से कैसे दूर हों, मुक्त हों, अभी तो अनर्थ कितने हैं भरे हुए हैं है ना, अभी तो हमारे अंदर वो इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, अभी तो हमारी इच्छा है भौतिक प्रकृति में भोग करने की, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, है ना। तो ऐसे में हमें जो है मतलब यही कोशिश करना चाहिए कि हमारी वो इच्छाएं मतलब कैसे शुद्ध हों, ठीक है ना। तो जब इच्छाएं शुद्ध होगी, जब आपके अंदर वो इच्छा पैदा होगी, तब कहीं भगवान जो है मतलब ऐसी व्यवस्था करेंगे। तो तब तक तो हम भक्तों की सेवा में लगे रहें, है ना। हम गोपी भरतो पद कमलियोर दास दासानु दासा, अभी मत सोचिए कि हम डायरेक्ट भगवान के पिता बन जाएं, हम भगवान के डायरेक्ट सेवक बन जाएं। भगवान की डायरेक्ट सेवा भी आप नहीं कर सकते। अभी अपना अधिकार मत समझिए कि हम भगवान के सेवक भी बन जाएं। हम सेवक के सेवक के सेवक के 100 बार नीचे सेवक बनाए ना, तो उसमें भी अपनी बहुत बड़ी सुरक्षा, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भक्तों के चरणों की धूल प्राप्त हो जाए। हाँ जी, आपका प्रश्न है। हाँ, प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। तो गीता भगवान कहते हैं ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। तो उसको भी मतलब शांत कहते हैं, प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमसम। ब्रह्मभूत अवस्था है ना, तो इसमें रजोगुण शांत हो जाता है। शांत रजसम, प्रशांत मनसम, मन प्रशांत हो जाता है ना। तो भी है, एक शांत रस होता है। एक तो है कि मन प्रशांत, मन प्रसन्न हो जाता है और प्रशांत हो जाता है मन, लेकिन एक शांत रस होता है। तो शांत रस जो है एक अलग ही है, जो भक्ति का रस होता है, जिसमें भगवान की महिमा का जो है आप आस्वादन करते हैं, तो वो शांत रस कहलाता है, ठीक है ना। और वैसे आप ब्रह्मभूत अवस्था में आप आ जाते हैं तो आप शांत हो जाते हैं, हैं, शोक नहीं है, आकांक्षा नहीं है, ये स्थिति आ जाती है। लेकिन ये स्थायी नहीं है, जब तक कि आप इसके आगे, फिर भगवान कहते हैं ना सोचते ना कांक्षति समा सर्वेशु भूतेशु मद भक्तिम लभते पराम। तो समस्त प्राणियों में समान हो जाता है, फिर मेरी परा भक्ति प्राप्त करता है और भक्तिया माम अभिजाना, फिर भक्ति के द्वारा मुझे जानता है मैं कौन हूँ कैसा हूँ। तो उसमें जो है कोई रस कोई स्थापित होता है, संबंध स्थापित बनता है। ततो माम ततो दो ज्ञात्वा विस्ते तदनंतरम, तो इस प्रकार से फिर वो मेरी लीला में प्रवेश करता है। तो भगवान की लीला में प्रवेश करना, तो शांत रस में भगवान की लीलाओं का रस प्राप्त करना, भगवान की महिमा भगवान के गुणों का आस्वादन करना, तो वो शांत रस कहलाता है। और एक शांत अवस्था होती है, ब्रह्मभूत अवस्था होती है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। अगर आप जो है उससे आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर आप जो है इधर गिर सकते हैं भौतिक स्थिति में, है ना। हाँ पंकज, नहीं देखिए शांत रस जो है, जब आप आ जाते हैं शांत रस में आ जाते हैं, तो शांत रस से आगे अगर आपका संबंध भगवान, आपका स्वरूप है भगवान का के दास रस में, तो फिर आप शांत रस से आगे दास रस में आते हैं। और उसमें शांत रस तो रहता ही है और दास रस की विशेषता होती है। फिर अगर आपका स्वरूप अगर वात्सल्य रस में है तो वात्सल्य रस में आप आते हैं, तो उसमें शांत रस और दास रस तो होता ही है और वात्सल्य की विशेषता होती है। तो नीचे के रस तो हमेशा ऊपर होते ही हैं और ऊपर के रस की विशेषता होती है। जो माधुर्य रस है तो माधुर्य रस में शांत रस, दास रस और सख्य रस और वात्सल्य रस, ये सब होते हैं, माधुर्य रस की विशेषता है, ठीक है ना। धन्यवाद। अच्छा, पिछली बार हम आए थे तो कुछ लीलाएं हुई थी, तो प्रदुम प्रिया आपको पढ़ के सुनाएंगे। पिछले एक महीना पहले हम जब आए थे तो कुछ लीला हुई थी यहाँ पर, तो उसको लिखित रूप दिया गया है। हैंड माइक है या ये माइक दें? देर लग रही तो इसी को ले लो।
हरे कृष्णा। तो पिछली बार तो 6 तारीख को आए थे यहाँ पे, तो 6 तारीख को जो घटना घटी थी वो यहाँ मंदिर में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उससे